ویلیویشن ہوئی تھی پانچ روپے کی 100% 5 روپے سے تھا 9.99 روپیز پہ غالباً ہم نے فکس کر دیا تھا جی ڈالر کو، وہاں پہ تقریباً زیادہ لاکھ صاحب نے لیا تھا، اور غالباً 13.5 روپے یا 14 روپے ایسا کچھ تھا ویری لیفٹ. مشرف صاحب نے 60 روپے پہ لیا تھا، اور ایکچولی 59 چلے میں 60 کہتا ہوں، 60 پہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ سے ایک فیکٹر کو آپ لے لیجئے صرف، باقیوں کو چھوڑیں آپ.
یہاں پہ وہ کہتے ہیں، اس کا میں نے سوال کیا کہ ان کے دور میں، آرمی کے دور میں سٹیبلٹی تھی، ڈالر ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس امپورٹس تو ڈالر پہ ہی ہمارا انحصار ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ آرمی کے اس ٹینیورز کے بعد جب پبلک پرائیویٹ گورنمنٹس آئی تھیں یا پالیٹیشنز آئے تھے، تو وہ اتنا آرمی روئن کر گئی ہوئی تھی کہ اٹ واز آؤٹ آف کنٹرول فار پالیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹی، واٹ وڈ یو سے؟
تو پھر تو بڑا آسان ہے یہ بات کرنا، چونکہ انٹرمیڈینٹ رہے ہیں نا ٹینیور. اگر وہ اتنا ریون کر گئے تھے تو جب پالیٹیشن سے آرمی لیتی ہے اس کا مطلب ٹوٹلی روئنڈ اکانومی لیتی ہے. پھر تو اس بات کو ثابت کرنا یہ ہوا نا کہ ٹوٹلی روئنڈ اکانومی لی، اور بالکل 99 میں جنرل مشرف نے روئنڈ اکانومی لی، کوئی شک نہیں ہے. قرض اتارو ملک سنبھالو، یاد ہوگا آپ کو، روئنڈ اکانومی لی، میں مانتا ہوں اس بات کو. پھر وہ کیسے 60 پہ لے کے 60 کا چھوڑ کے چلے گئے، اگر اس بات کو میں مان بھی لوں.
بڑی پیاری بات کہی، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کینیڈا میں، میں آج کمپیئر کر رہی تھی، آنٹیریو میں ہماری کنزرویٹیوز اینڈ لبرلز ہیں، 407 بنی تو بہت اچھی ہائی وے تھی، اور ہمارے ایک پریمیئر تھے آنٹیریو کے ڈالٹن میگینٹی، ڈالٹن میگینٹی 407 کو بھی پرائیویٹائز کر رہے تھے. لبرلز ہمیشہ بڑا کھل کے خرچ کرتی ہیں، کھل کے خرچ اور ساروں کو ان دا لانگ رن ٹربل میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ابھی ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے یہاں ایک ہائی وے تھی 412، اس کا ٹول بہت زیادہ تھا، پچھلے الیکشن میں وہ ٹول انہوں نے معاف کیا. ابھی 407 جو ہے جس کا ٹول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہماری ایک ہائی وے ہے 401، اس کے اوپر رش زیادہ ہو گیا ہے. آج ہمارے ڈگ فورڈ جو ہمارے پریمیئر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دے آر پلاننگ ٹو ٹیک بیک ہائی وے 407، وچ ول میک ریزیڈنٹس کی زندگی کو سونا بنا دیں گے. تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے کینیڈا میں کنزرویٹوز آتے ہیں تو وہ بچت کر کے کچھ بنا کے جاتے ہیں، انفراسٹرکچر بھی بنا کے جاتے ہیں، کچھ اجدا کم کر کے جاتے ہیں. لبرل آتے ہیں تو وہ اس کو $10 پر کرائے، اس کو $50، میں تو وہ پیسے ہی بانٹنے میں چک لگے رہتے ہیں.
اشرف بہن، ہماری لیو سائڈ وہی بات وہی آتی ہے، مجبور کیا نہ پڑ جاتا ہے، جو ایوب خان کے وقت ہماری انڈسٹریل گروتھ تھی جی، اگر ہم 65 وار میں ہم نہ گئے ہوتے یا وہ پیس کنٹینیو ہوا ہوتا، مطلب پاکستان واز ٹاٹ ساؤتھ ایشیا میں ڈیولپنگ کنٹریز کے مطابق ایک ماڈل پیش کیا جاتا تھا انسٹیٹیوشنز میں. پاکستان
صاحب جرمنی کو قرضہ دیا تھا،
یہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں،
اگر آپ کی اجازت ہو تو تین کال.
جی 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 پلیز پلیز.
اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1777، 416-620-1777 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. جناب تنویر سلطان صاحب سے آپ ڈائریکٹ بات کیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں دروازوں کو کھلا رکھنا ہے، کہ یقیناً آپ کی ریزرویشن ہو سکتی ہے، آپ اپنی لحاظ سے بات کریں. ہمیں اشخاص سے ہٹ کے میرا بڑا کنسرن ہے کہ اس وقت بھی جتنے آپ کے پالیٹیشنز ہیں، دے ٹاک نان سینس، نن آف دم ٹاک اباؤٹ دی. آپ بھی اب کینیڈا میں آتے جاتے ہیں، یہاں پر ایک منسٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو دو اور منسٹر جو شیڈو منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں قوم سیریس نہیں ہے، ہم روٹی کپڑے کی ہی صرف بات کرتے ہیں. وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایشوز.
ہمارے آفا بہن، اگر آپ پاکستان میں، بڑا انفارچونیٹ ہے جی کہ جو پولیٹیکل ادوار ہیں ان کو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ اگر شام کو پاکستان میں جو پرائم ٹائم ہے، جو پروگرام ہے، وہ تقریباً دن کی جو کارکردگی ہے حکومت کی یا اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں پروسیڈ اس کے متعلق ہوتا ہے، وہ جب آپ شام کو پروگرام دیکھیں اس کے بعد آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ دیکھنے کے بعد ملک کے جو ایکچوئل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟
کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی.
تو آپ مجھے خود بتا دیجئے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جی گاربیج ان از گاربیج آؤٹ، جب آپ کی ان پٹ ہی نہیں ہے، آپ کی اس طرف آپ لگے ہوئے اپنی سروائیول، اپنی جوڑ توڑ اور پولیٹیکنگ ہے، ہو ہی یہ سب کچھ رہا ہے، تو آپ کس وقت پر کب یہ کام کریں گے؟
بہت شکریہ تنویر سلطان صاحب. میں آنیسٹلی آپ کے سامنے بات نہیں کر رہی, اور بائی چانس جو کالر پہلے ہمارے ساتھ آئے ہیں میں ان کی بھی منہ دیکھے کی بات نہیں کر رہی. مجھے ایک کالر نے کال کر کے کہا کہ مزہ آ جاتا ہے چند لوگوں کو سن کے, جس میں انہوں نے آپ کا بھی نام لیا, انہوں نے ڈاکٹر مرسا کا بھی نام لیا, ڈاکٹر صاحب کا بھی نام لیا, دو تین لوگ اشر عظیم کا ذکر کیا.
بہت شکریہ.
بائی چانس پروگرام کو شاید سن رہے تھے ڈاکٹر مرزا حیدر رائرسن کے ساتھ, میٹروپولیٹن یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میرے سے کوئی غلطی ہوئی؟ میرے سے نہیں, یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی آپ کی طرح تنویر سلطان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, آپ کی کیا ان پٹ ہے؟
میری یہ ان پٹ ہے, دیکھیے اکانومی جو ہے اقتصاد, یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا ایک نامن کلیچر ہے اور اس کے سمجھنے کا طریقہ ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اس لاجک کو تو پھر ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں صرف اس بات پہ کہوں گا کہ پاکستان میں بائنگ پاور
دوبارہ
نہیں
ہے,
اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 40% بچے جو ہیں 40% آف دا چلڈرن ان پاکستان ہیو اسٹنٹڈ گروتھ, جس کے معنی یہ ہے کہ 40% بچوں کے ماں باپ ان کو اتنا کھانا نہیں کھلا سکتے کہ ان کی ہائٹ اتنی ہو جائے کہ جو نارمل بچوں کی ہائٹ ہوتی ہے, اور ان کی ذہنی قابلیت اتنی ہو کہ جو نارمل بچوں کی ذہنی قابلیت ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں بائنگ پاور بہت زیادہ ہے, یہ بہت ہی خطرناک اور از حد غیر مناسب گفتگو ہوگی, کیونکہ پاکستان بہت شدت سے کرائسس میں ہے. پاکستان کے کرائسس کا حال یہ ہے کہ ہماری اپنی ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 1-2% نہیں ہے, یعنی ہم تعلیم پہ نہیں لگا رہے, ہم صحت پہ نہیں لگا رہے, اور اس کی جب کسی اکانومی کی حالت اس قدر بری ہو جائے کہ تعلیم صحت اور ڈیولپمنٹ کے پیسے نہ رہیں تو اس سے برا حال نہیں ہوتا. اب آپ کہیں کہ جناب دیکھیں بازار میں لوگ جا رہے ہیں, آپ ترکی چلے جائیں, ترکی میں ابھی کچھ دنوں پہلے 40-50% تک تھی انفلیشن, اور 40-50% ہونے کے باوجود لوگ چیزیں خرید رہے تھے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اقتصاد بڑا اچھا اور اکانومی ریزیلینس ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ یا تو یہ آپ کہیں کہ اتنی چیزیں مہنگی ہو جائیں کہ لوگ فاقوں پر آ جائیں اور مر جائیں, ایسا نہیں ہوتا اقتصاد میں. دوسری ہے کہ پھر آپ کو قرضے مل جاتے ہیں. باقی جو بات تھی یہ ایوب خان کی, اور یہ اس میں میں نے بڑی تفصیل ڈان میں لکھا ہے اور دیگر جگہ لکھا ہے کہ دیکھیں وہ اکانومی ڈفرنٹ تھی اس لیے کہ اس وقت پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایڈ آ رہی تھی, آپ کو تو لون ہی نہیں مل رہے تھے, امریکہ سے آپ کو سیدھی ایڈ مل رہی تھی, اور وہ ایڈ پہ ملک چل رہا تھا. ڈیولپمنٹ بجٹ پاکستان کا سارا یو ایس ایڈ پہ چل رہا تھا, ایسا بھی نہیں تھا کہ لوکلی گرون آپ کا ریونیو تھا. تو جنرل مشرف کا دیکھ لیں, جنرل مشرف کے دو دور ہیں, 2001 سے پہلے کا اور 2001 کے بعد کا. جو ہی وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو جنرل مشرف کی جو ہے اکانومی ٹھیک ہوگی, اس سے پہلے کے سارے جو ہے اکانومک سروے آف پاکستان میں اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, بری طرح ملک پٹ رہا تھا. تو میرے ناقص رائے میں یہ بہت ہی خطرناک گفتگو ہوگی, یہ طرز فکر کہ بڑی ریزیلینٹ ہے, بائنگ پاور ہے, اور فوجی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی چلا سکتے ہیں. فوجی تو آپ دیکھ لو آپ کا کہیں بھی نہیں چلا سکتے, پوری دنیا میں کہیں نہیں چلا سکے تو پاکستان میں کیسے چلا سکیں گے؟ اور جو ہی آپ کی ڈیفنس ایڈ بند ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی جو ہے بالکل زمین پہ آ جاتی ہے جب فوجی چلا رہے ہوتے. یہ حقائق ہے, اس میں تو سارے نمبرز موجود ہیں, سب کے پاس موجود ہیں. دوسری بڑی بات یہ کہ دیکھیں, یا تو یہ کہ پاکستان میں جو ہے قابل لوگ نہ ہو. پاکستان میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. کوئی بھی شخص وہاں پر جو اتنے عرصے سے اقتصاد پہ کام کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اکانومی فلرش کر دیا, یہ بائنگ پاور ہے. آپ لوگوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جس میں بائنگ پاور ہو اور 40% بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہو؟ یہ پاکستان ہے. تو خدا را ذرا
میرا خیال سلطان صاحب کو بات کرنے کا موقع دیں آپ ذرا. جی
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب
جی وعلیکم السلام.
آئی ایم سوری ایکچولی آئی مس دا فرسٹ پورشن آف یور ساری گفتگو کا, وہ مائک نہیں تھا یہ کام کر رہا, اینڈ میں نے کوشش کی آپ کو انٹرپٹ کر کے ذرا باور کرا دوں یہ بات, سو آئی مس یور فرسٹ پورشن. میں نے دوڑا جو بعد میں سنا نہیں کہ آپ کا, میں اس میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں. میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری جو ہے وہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, ملک کو بہت اچھا چلاتے ہیں, یہ کہیں میں نے نہیں کہا. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہ ادوار دیکھ لیں جن ادوار میں پاکستان کی اکانومی اچھی رہی اور جس میں بری رہی, اور اس کو انالائز کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں. ان میں جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں بالکل میں اس کو اگری کرتا ہوں, چونکہ وقت مختصر تھا تو میں نے اس کو سمپل لفظ میں کہہ دیا تھا کہ سنس وی آر الائنڈ ود دا ویسٹ, جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو میں اکنالج کرتا ہوں سنس وی آر لائن ود دا بیسٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ وائی از دس سو کہ انسپائٹ آف آل جو آپ نے فرمایا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں تو کوئی فیکٹ نہیں نا. پلاننگ کمیشن سے فگرز لے لیجیے کہ ان ادوار میں بہتر رہی ہے پاکستان کی اکانومی. میں کہیں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ بڑی پرفیکٹ رہی ہے یا اس میں کوئی شارٹ فال نہیں تھے یا ملٹری ایڈمنسٹریٹرز دے آر دا بیسٹ اکانومیز, ناٹ ایٹ آل. آئی ڈونٹ مین ٹو سے. میں تو ایک ڈیریویٹو ہے اور اس کو اکیڈیمیکلی اینالائز کر کے گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں.
بھیا آپ صرف ڈالر کی بات کر رہے ہو, اکانومی میں آپ صرف یہ دیکھو کہ آپ کا اکنامک اسٹرکچر جو ہے وہ ویلو ایڈ کی طرف گیا یا نہیں گیا. آپ کا اکنامک پروڈکٹیوٹی کسی بھی ملٹری دور میں ویلو ایڈ انڈسٹری کی طرف نہیں گئی, سارے کے سارے جو ہیں وہ سبسڈائز ایگریکلچر پہ رہے. یہ ڈالر کو ڈالر سے کمپیئر کرنا پوری
یار
یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں کہ جو کتابیں لکھتے ہیں ڈالر یہ کرنسی ریٹس پر اور کرنسی فلکچویشنز پہ, یہاں کوئی ایسا پرائم منسٹر کینیڈا میں یا امریکہ میں پریزیڈنٹ نہیں آیا جو ڈالر اپنا چائنیز یا جاپانیز یا کسی اور کرنسی کے ساتھ موازنہ کر کے کہہ کے دیکھو ہم نے اکانومی کتنی اچھی چلائی ڈالر کی جو چائنیز کی رومبے کے ساتھ پیرٹی ہے یا یورو کے ساتھ پیرٹی. یہ تو گفتگو ہوتی نہیں کسی جگہ پہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ڈالر کی پیرٹی روپے کے ساتھ.
میں پھر گزارش کرتا ہوں,
یہ تو لاحاصل گفتگو ہے.
جی میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ایک انڈیکیٹر آپ کو بتایا ہے, یہ نہیں کہہ دیا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چونکہ وقت مخصوص ہو رہا ہے تو آپ چند باتیں ہی کر سکتے ہیں نا. پوری اکانومی تو نہیں پاکستان کی میں کھول کے یہاں بتا سکتا, تو میں ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں. اور یہاں میں شاید میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن ایز اے بزنس مین بینگ ورکنگ ان پاکستان فار 40 ایئرس پلس یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اگر ڈالر سٹیبل ہے تو اس کا ہماری اکانومی کے اوپر بہت بڑا افیکٹ, بڑا ایک مثبت افیکٹ ہے. یہ میں باقی آپ نے جو بات فرمائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالر کی مینیپولیشن اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے, لیکن یہ کہنا کہ ڈالر کی اسٹیبلٹی سے پاکستان کی جو ڈومیسٹک اکانومی اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے تو یہاں میں پھر معذرت سے شاید پھر میں نہیں سمجھ رہا پاکستان کا کام کاروبار کوئی. میں نے کام کاروبار کیا اور میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب اسٹیبل رہتا ہے تو اس کا کتنا مثبت اثر ہے پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر.
بھیا جو آپ کہہ رہے ہو وہ ریورس کازیلٹی ہے. ریورس کازیلٹی کا مراد یہ ہے کہ جب آپ کی اکنامک سٹرکچر اور پروڈکشن اور گروتھ ہوتی ہے تو آپ کا ڈالر سٹیبل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈالر سٹیبل ہو تو پھر اکانومی سٹیبل ہوگی.
الٹے ایرو نہیں لگا رہا. میں تو دیکھیں پھر میں وہ گزارش کر رہا ہوں, میں نے پہلے کہا تھا میں اکانومسٹ نہیں, میں ڈیریویٹوز کی بات کر رہا ہوں کہ نیٹ نچوڑ اور نیٹ نتیجہ کیا ہے, وہ کیوں ہے, کیا ہے, اس پہ نیچرلی وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.
اب دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ بائنگ پاور ہے, 40% آف چلڈرن ان پاکستان ہیو اسٹنٹڈ گروتھ. نہ ان کی ہائٹ اپنے نارمل بچوں کی ہے, نہ ان کی ذہنی نشو نما نارمل بچوں کی. یو ہیو لیونگ ان اے کرائسس اسٹیٹ. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے. یار بہت ظلم ہے, ایسا نہ کیجیے کہ وہ لوگ جن کو کھانے کی پوری روٹی نہیں ملتی. یہ آپ کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں, میں نے تو نہیں پاکستان کینیڈا سے بنا رہا. یہ آپ کے اکنامک سروے آف پاکستان میں پچھلے 5 سال سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے دیٹ یو ہیو اسٹنٹڈ گروتھ. اگر آپ اپنے ایوریج بچے کی ہائٹ دیکھیں اور یہاں کینیڈا میں یا یورپ میں یا کہیں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں, 40% بچے پاکستان کی اپنی ہائٹ پہ نہیں آ رہے, اپنے پوٹینشل پہ نہیں آ رہے. اس وقت پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو جا کے پوچھئے کہ پہلے سال یا 2 سال یا 5 سال میں گریجویٹ انجینئر کو نوکری مل رہی ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے 40 سے 60% گریجویٹ انجینئر بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اس بات سے میں نے یہ میرا کوشچن آج تیسرا مہمان ہے جس سے میرا رہا, میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے جو ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک بھی تھے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو نوکری نہیں ملتی, آپ کے ریٹائرڈ آفیسرز نکلتے ہیں بڑی بڑی پینشنز کے ساتھ مراعات کے ساتھ, وہی ہر ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کے پاس پوزیشن ہے ہر لیول کے اوپر, آپ کا اسٹوڈنٹ اپنا نہیں تو اس لیے ملین لوگ پاکستان چھوڑ گئے. مگر آن دا ادر ہینڈ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ضرور, نہ میں آپ کا ساتھ دوں گی نہ میں تنویر صاحب کا ساتھ دوں گی, دیر آر انٹرنیشنل این جی اوز. آج آپ آنٹیریو کی بات کر کے دیکھ لیجئے گا, میں سڑکوں کے اوپر نکلتی ہوں اور میں سوچتی ہوں جس دن ان کی آبادی کراچی جتنی ہوگی میں دیکھوں گی سڑکیں کیسے کنٹرول ہوں گی, میں دیکھوں گی یہاں کیا صورتحال بنتی ہے. ایک سیکنڈ
آپ نے جواب خود ہی دے دیا اپنے سوال کا کہ پاکستان کینیڈا کی آبادی کراچی جیسی اس لیے نہیں ہوگی کہ فرٹیلٹی کنٹرول از دا فرسٹ پرنسپل آف اکنامکس.
اٹس ناٹ فرٹیلٹی کنٹرول, اٹ از دی ایڈوانسمنٹ آف دی ہیومن بیئنگز دیٹ ناؤ دی ینگ پیپل دے ڈونٹ وانٹ چلڈرن. اٹ از ناٹ کنٹرول بائی دا گورنمنٹ جیسے کہ کوئی پریکاشنری میئر سکھائے جاتے ہیں, ناٹ ایٹ آل. یہاں 13 سال کی لڑکی بھی کمپلیٹ کرتی ہے مگر
جو جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے نا تو فرٹیلٹی ریٹ گھٹتا ہے. جو عورتوں کو کام کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں,
काम करने
या इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान में द ओनली एंटरटेनमेंट इज टू बच्चे पैदा करना, आप इसको अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब मैं इसको कंक्लूड यहां पे इस लिहाज से करूंगी कि अगर आप देखें कि जितनी एनजीओज हैं वेस्ट की, ये जब एनजीओज निकलती हैं पाकिस्तान, और तनवीर सुल्तान साहब आपको भी मैं एक मौका दूंगी इसमें, जब ये एनजीओज निकलती हैं ना पाकिस्तान की तरफ, तो ये कहते हैं जी औरतों के साथ सेक्सुअल ज्यादती की गई, यहां किया गया वो, यहां वेस्ट में आप देख लें कितने इस तरह के केसेस निकलते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं आदमी और उसके बाद चाहे वो हॉलीवुड के हैं, चाहे वो आपके कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, इस वक्त मैग्ना वाला फंसा हुआ है, इस वक्त आप इनके हॉलीवुड स्टार्स को देख लें वो पकड़े हुए हैं, मगर पाकिस्तान में एनजीओज हमें डीफेम करने के लिए बहुत हैं। हालांकि अगर आप इंटेलिजेंस लेवल देखते हैं तो चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, वहां के बच्चे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यहां बाज़ुकात बाज़ चीजों को डीफेम करने के लिए वो इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम उस मुल्क को डिस्करेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात को माने
मैं इस बात पे बहस ही नहीं करता, मतलब ये टोटल जो है वो टेंजेंट पे चली जाती है कि एनजीओ क्या कर रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पाकिस्तान की इक्तिसाद के जो मसाइल है, मसलन आप देखें मुआशरे में क्या हो रहा है, आप सड़क पे चले जाएं तो लोग इशारे पे नहीं रुकते, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये बिहेवियर इकोनॉमिक्स का, कि क्या लोग जब कोई नहीं देख रहा तो कवायद की पाबंदी करते हैं या नहीं, ये आपको मुझे मालूम है, हम लाहौर में इकट्ठे थे जाके देखा हर जगह, कि यहां हम लोगों को इस कदर कायल नहीं कर सकते नज्म के लिए कि वो इशारे पे एक ट्रैफिक लाइट की पाबंदी कर लें। तो इकोनॉमी पे पाबंद करना लोगों को बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये खुदा रहा ये बात याद रखिए कि इस वक्त लोगों को रोटी इतनी नहीं मिल रही, द कैलोरिक इनटेक इन पाकिस्तान इज लेस देन 1800 कैलोरीज पर डे एंड इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इट्स समटाइम्स 1400 और 1200, और जो अर्बन पुअर है वो सबसे कमजोर है। जो सिंध में जो आप देख लो, सिंध में इस वक्त जो छोटे लोग हैं छोटे शहरों के लोग, उनकी कैलोरिक इनटेक बिटवीन 1200 एंड 1500 कैलोरीज पर डे है। हम जाके ये कह
रहे हैं कि वो आपसे एग्री नहीं कर रहे, ही इज नॉट टेकिंग इट,
उड़ा रहे नहीं दिस इज नॉट,
डॉक्टर साहब ये क्या होता है, ये फैक्ट है, मैं गुजारिश गुस्ताखी कर रहा हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी, बड़ी अच्छी बात है ये ओएफ की फैसिलिटीज और ये नरिशमेंट फूड दे देना, पाकिस्तान भी ठीक हो जाएंगे बच्चे। ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो ओएफ की मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये, और ये फूड की नरिशमेंट वैल्यू पाकिस्तान में बच्चों को दे दें वो भी ठीक हो जाएंगे।
उसके लिए भैया इकोनॉमी चाहिए ना।
हाँ आगे ने कौन है, तो हम वहीं पे बात कर रहे थे, हम उसी की बात कर रहे थे क्यों ठीक है और क्यों गलत है। ये बातें बड़ी अच्छी हैं, आप आज कंपेयर करें कनाडा से, कंपेयर करें रिलेटिव कंपैरिजन से, हमें भी पता है यहाँ कनाडा में क्या है, वहां भी पता है वहां क्या है, जनरल जो आपको पता है हमें, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ
अभी तक कोई कंपैरिजन नहीं किया।
नहीं आपने रेफरेंस दिए ही यहाँ के हैं मुझे कनाडा के, आप रेफरेंस दो तीन दे रहे, अभी आप बिहेवियर बता रहे हैं ट्रैफिक के, यहाँ से कंपेयर करके आप बता रहे हैं ना, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ।
अरे यहाँ से ना कीजिए, आप तुर्की से कर लीजिए, आप यहाँ से ना कीजिए, आप नेपाल से कर लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से ना कीजिए, वियतनाम से कर लीजिए, यहाँ से ना कीजिए, कोई और मुल्क ढूंढ लीजिए, इवन बांग्लादेश देख लीजिए, ऐसा ना करें भैया।
अगर आप उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं, इंडिया
एक प्रोग्राम डॉक्टर मैं आपको स्टूडियो में बुलाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक वी विल डू दिस प्रोग्राम बिकॉज अब हम वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। न्यूज वाले पीछे मुझे गालियां दे रहे हैं कि बिकॉज दे हैव टू डू द कंडक्ट द न्यूज प्रोग्राम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तनवीर सुल्तान साहब आपको बहुत शुक्रिया, मगर मैं डॉक्टर साहब आपको तकलीफ दूंगी, वी विल कम एंड विल डू प्रोग्राम टुगेदर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुजा हैदर। जी डॉक्टर साहब माइक आपका, आप तनवीर सुल्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने लिहाज से जो एनालाइज किया और उसने
मैं एफपीएन गुजारिश करता हूं, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि पाकिस्तान की जो रियलिटीज हैं या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उनमें एक मिनट
प्रैक्टिकल लाइफ और है बाय बुक्स और
उनमें जरा ट्रांसलेट करके दिखाएं ना, एक मिनट मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनल हो जाएगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो आज आपको टीवी वगैरह पे मिलते हैं दे हैड बीन एन ऑफिस इन पाकिस्तान, रन दे हैड बीन एन ऑफिस इन पाकिस्तान, आजकल एक साथ बहुत ज्यादा आते हैं मीडिया पे, वो रहे हैं पाकिस्तान के चेयरमैन सीबीआरबी, जब वो चेयरमैन सीबीआर थे तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं परफॉर्म कर सके वहां पे गुजारिश, और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं تھیری میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, یہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. آپ انٹرنیشنل کمپیرزن کریں, یہ سارے جتنے بھی ڈیولپڈ ورلڈ کے ہیں بڑے, آل دوز فگرز دے لک ویری ویری روزی اینڈ ویری گڈ اینڈ دیر ویر گڈ اینڈ دیو اچیوڈ اٹ نو ڈاؤٹ. ہم تو پاکستان کی ریالٹی کو دیکھنا ہے نا جی, اس ریالٹی میں ان کمپلشن کو دیکھنا ہے. اوکے, وی شوڈ لک اپ ٹو یہ ڈیولپڈ ورلڈ جنہوں نے یہ سب کچھ اچیو کیا ہے. لیکن ہم جب وہ, میں اس کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان میں میرا ایک جنرل امپریشن ہے اباؤٹ کہ ایک مکمل ہماری پاکستان بیشنگ اپروچ ہوتی ہے. میں اسے ڈفر کرتا ہوں جی,
کیونکہ میں نے کہا نا وہاں این جی اوز آ گئی.
پاکستان کو پاکستان کی ریالٹیز میں آپ دیکھیں. میں تو اسی لیے بات کو بڑا اکیڈیمک رکھنا چاہ رہا تھا, ارسپیکٹو آف پولیٹیکل یا کچھ. ہمیں بھی پتا ہے یہ کیوں نہیں. ہم نے کیا تھا کہ وہ بات اکانومی سے شروع ہوئی تھی, تو میں نے کہا وہ فیکٹرز دیکھ لیجیے, کچھ تو پاکستان میں اچھے ادوار بھی رہے ہیں نا, وہ کیوں تھے. اب یہ کہنا کہ کوئی ڈالر سے فرق نہیں پڑتا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ڈالر سے. میرا خیال ہے کہ اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کر دینا, یہ تو ہمیں پتا ہے نا, ہمارے ایک ورلڈ پرائز بھی اپنائیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے ڈالر ریلیٹڈ, اس کا کتنا بڑا افیکٹ آیا پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر.
صحیح,
تو میں نے گزارش کی کہ کتاب یہاں بڑی اچھی بات ہوتی ہوگی. میں نے اسی لیے پہلے کا بات, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں تو عملاً جو پریکٹس کی ہے پاکستان میں بزنس, اس کو جب ریپلیکیٹ کرتا ہوں اور اپلائی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اس کی میں نے کچھ آپ کے سامنے کمپیریٹیوز پیش کیے تھے.
کینیڈا میں بھی بعض اوقات بعض جگہوں پہ کتاب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہی میں بات کرتی ہوں کہ 6 کورسز کروائے جاتے ہیں, کتاب میں کچھ اور ہے مگر پریکٹیکل لائف میں از ٹوٹل ڈفرنٹ. سو تھیوری از ڈفرنٹ بٹ دا پریکٹیکل از ٹوٹل ڈفرنٹ. ابھی دیجیے اجازت کیونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے. تنویر سلطان صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر فار بینگ ویتھ ہیئر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈاکٹر مزہ صاحب کو خاص طور پر ریکویسٹ کر کے بلاؤں گی. دیز آر, یہ نہیں کہ ہم اس میں کوئی ایک دوسرے کو, وی کین اگری ٹو ڈس ایگری, مگر ہم ملک کی بہتری کے لیے ایک سوچ دینا چاہتے ہیں. آپ کا مائک
جی نہیں, ضرور ضرور, آئی ول ویلکم جی, اینڈ آئی ایم شیور دیئر ول بی اے لاٹ ٹو لرن فرام ہم آلسو. لیکن وہ یہ ضرور دیکھیں کہ جب یہ ہم جب آئیڈیل اکانومیز کی بات کرتے ہیں یا جو اکانومی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, اس کو صرف اتنا ڈاکٹر صاحب سے میرا ہوگا کہ اس کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں پاکستان میں کیسے کرنا ہے. ہم نے
یہی تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے برین ڈرین ہوا سر.
اللہ
تعالیٰ آپ کو پوزیشن دے, آپ نے ہمیشہ ایز این انڈیپینڈنٹ تھی.
اب فار ایگزامپل یہ فرٹیلٹی کے اوپر آ جائیے, اس میں جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہیں, ڈیل کر کے دکھائیں نا اس کو مجھے. یہ کہنے کی باتیں ہو جاتی ہیں. جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے, آپ ضرورت کر سکتے ہیں اس چیز کو.
مولوی نہیں جان چاہیے,
اس میں ایک ریلیجیس, اس میں یا تو اس کو ہم ڈیلیبریٹ کریں نا جی, پہنچے ریلیجیس کنسنسس پہ. تو اس کو لٹر, یہ میں صرف ایک بات آپ کو بتائیے, فرٹیلٹی کے اوپر میں آپ سے گزارش کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں نا ان کمپلشنز پہ. پھر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جب جمہوریت ہوتی ہے تو نمبر گیمز ہوتے ہیں, نمبر گیمز ہوتے ہیں تو ان سارے سینٹیمنٹس کو بھی آپ نے لے کے چل رہے ہیں. یہ تو ابھی ایک چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تو ہم نے اس کے اوپر دیکھا. یہ
بہت شکریہ سر,
تھینک یو.
اسٹے ٹیونڈ, چند ایک اسپانسرز اینڈ ول گو بیک فار دی نیوز ان ڈیٹیل. آج تھوڑا سا ہم آؤٹ آف ٹائم چلے گئے, ابھی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ,
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
میں ہاں جسراج سنگھ ہلن, کامن سینس کنزرویٹو. جسٹن ٹروڈو اتے جگمیت سنگھ والوں لایا کاربن ٹیکس پہلا ہی تیل قیمتاں ودھا رہا ہے, ہن کاربن ٹیکس نوں چوگنا کرنا چاہندے نے. اس دے نال ٹرکرز دی کمائی ہور کٹے گی تے گروسری سمیت مہنگائی ودے گی. صرف پیر پالیف اتے کامن سینس کنزرویٹوز لبرل NDP کاربن ٹیکس ختم کر کے ٹرکرز اتے سارے کینیڈینز لئی چیزاں سستیا کرن گے. پیر پالیف اتے کامن سینس کنزرویٹوز والوں اک سنیہا.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا, ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائز تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747171.
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ. ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੇ. ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੋਲਰ, ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ .ca/bylaw ਤੇ ਜਾਓ.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। यही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जानो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक क्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक क्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
दस के दिन हो गए तेनू स्नेहा लाए नू पर तू इग्नोर ही कर रहा। हूं फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनिया। आपदा ते आपदे परिवार दा ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दियां सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज़ दी वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज ते है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी कटा दित्तियां हन। इस दौरान पियर पॉलियव एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट कीती। हुण सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव्स ही कैनेडा दा माहौल ठीक कर सकदे ने। ब्रॉट टू यू बाय पियर पॉलियव एंड कैनेडाज़ कंजरवेटिव।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
6047-7649-0241। अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपके अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स।
Free dental treatment for kids. Healthy Smiles Ontario ke tahat. Dentistry on Mississauga. 65 Montpelier Street, Unit 104, Mississauga Road and Financial Drive.
Call kijiye Dr. Nazia Rehman. 905-872-1100. Consultation absolutely for free. Dentistry on Mississauga.
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। canmsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद है।
वेलकम बैक तमाम सामीन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आपका और हमारा आज भी सिलसिला 6:30 बजे तक रहेगा। जनाब जैसा आपको मालूम है कि ठंड दिन जब आ जाते हैं तो रेडियो का टाइम कम होता चला जाता है, आज भी 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद शाजिया मलिक साहिबा गर्मा गर्म और खट्टी मीठी खबरें लेकर आपके साथ हाजिर खिदमत होंगी। जनाब आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर, इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com पर भी आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स के नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां तारों भरी रातें हैं, यानी हाई एक्सटेंशन वायर्स हैं इलेक्ट्रिक की, या आप ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां गड्ढे ज्यादा हैं और रेडियो सही सुनाई नहीं दे रहा, तो जनाब आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 डायल कीजिए तो आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी रेडियो की सुनाई देगी। इसके अलावा हमारा रेडियो ई आवाज रेडियो एंड टेलीविजन के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे कंटेंट में और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। हमारा टीवी ई आवाज टीवी के नाम से तमाम ही IPTV बॉक्सेस पर मौजूद है, पाकिस्तानी या उर्दू कैटेगरी में इसको सर्च कर लें। जाहिर है 6000 से ज्यादा IPTV पे चैनल्स हैं, आप ई आवाज के नाम से सर्च कर लें और रिमोट में एक बटन होता है फेवरेट का, उसको जब फेवरेट का बटन ऐड करेंगे उसके बाद आप ये फेवरेट में चला जाएगा, तो आप आसानी से ई आवाज टीवी को देख सकेंगे, आपको फिर बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। चले जनाब खबरों से पहले ऐसा करते हैं माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, प्यारा सा गाना सुनते हैं, थोड़ा सा लगा दूंगा उसके बाद, क्योंकि वो स्नैपचैट होगा उसके बाद फिर तस्वीर खींची जाएगी तो वो एक टाइम है 2-4 मिनट का, तो उस दौरान आप ऐसा करेंगे ब्लड प्रेशर हाई करने से पहले उसको लो करते हैं, तो एक गाना प्यारा सा प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वापस आते हैं। हमारा नंबर 4166201778।
मेरे दिल के ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले, तेनु दिल दवा सुखा प्रभाया घर के याद के तारा जहाँ छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेनु दिल दवा सुखा आज दिन चाहूँ रात दिन जिसे रब मेरे नाम करूँ से तेनु दिल दवा सुखा अज दिन मुदा है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना
रहे सर दर्द तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनु दिल दा वास्ता, रब्बा मेरे दिन जी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे रख गले, तेनु दिल दा वास्ता, रब्बा या दर से याद के
Grill in the Hut, Mrs. Saga में order via phone. इमरान भाई को कॉल करें.
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383. Grill in the Hut.
हमारा मंसूबा ऑन्टेरियो को कनेक्ट कर रहा है. हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांजिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो. मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं. इसकी अदायगी ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है.
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन. फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466.
वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो हमें 770 AM रेड पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़. मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और अब जनाब घंटियां बज गई हैं, म्यूजिक बज गया है, साउंड इफेक्ट रेडी है. हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं गर्मा गर्म खट्टी मीठी खबरें लेके. स्नैपचैट ले लिया है, इंस्टा पे अपडेट कर दिया है, तो अब आप सबको अपडेट करने के लिए और वही खट्टी और मीठी खबरें सुनाने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं शाज़िया मलिक साहिब. आए उनको खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी हैं?
वालेकुम सलाम. आज मैंने कहा मैं आज पूरा कहूंगी बड़ा काम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो.
अच्छा, व्यू फिर भी चार ही रहेंगे, व्यूज पांचवा नहीं होगा इससे कहने से. ऐसे करने से पांच भी.
अब देखिए मैंने कितना म्यूजिक मचाया है, मिला है ना. केम छो, कैसे हो.
केम छो, कैसे हो. मजा मचो. जमन आपोलो
आपोलो.
चलो जमन खाओ से ठीक हो गया. चले जी,
ठीक है जी.
तो आज की क्या गर्मा गर्म खबरें आप लेके, क्या हालात है.
अरे ये तुम रोज कहते हो खट्टी मिट्टी खबरें, ये खट्टी मिट्टी नहीं है, ये गर्मा गर्म खबरें. पख दिया खबरें. सीखो ये वर्ड सीखो, तुम्हारी जिंदगी जो है ना, तुम्हारी जिंदगी बल्कि बहुत सफल हो जाएगी.
नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ जिंदगी जैसी गुजर रही है. नहीं नहीं, खराब जैसी ही गुजर रही है.
हाँ,
वैसी ही गुजरती है.
क्योंकि तुम तो यू फील लाइक शाहरुख खान ना, तो
आई ऑलवेज लाइक फील.
हम नहीं कर रहे ना, जब तक हमारे पास 500 करोड़ नहीं आएगा हम फील नहीं करेंगे.
इनर फीलिंग होनी चाहिए.
नहीं नहीं नहीं, जब तक जो है ना नंबर्स नजर नहीं आएंगे बैंक अकाउंट में, उस वक्त तक ये फीलिंग अंदर से भी नहीं आएगी.
वो एक और डायलॉग भी था ना, वो जो फीलिंग वाला.
हाँ,
ये एक सिक्का लेकर मैं निकला था, आज इस पूरी मार्केट का मैं मालिक हूँ. अमिताभ बच्चन की मूवी का कोई मुकद्दर का सिक्का.
मुकद्दर का सिक्का.
ओह मैन, आप बिना वजह जी पैसे होंगे तो भाई वो एक रुपया का सिक्का.
मुझे भी वो गुरु बताओगे, एक रुपये से तुमने पूरी मार्केट कैसे खरीदी.
कहता है जी मैं ये एक बूट पॉलिश करके वो सिक्का को पता नहीं को देता है, वो समाज रखता है, और आज पूरी मार्केट का मैं मालिक हूँ, मैं सिकंदर हूँ. व्हाट अ मैन यार.
और कसम से वो मैन तो ये है जो इंडिया में बैठे हैं यार, अंबानी और अदानी.
तो वो भी ऐसे ही बने होंगे ना. हाँ, वो कोई यूएसओ तो छोड़ने नहीं आया था उनको, कोई डॉलर देके.
आमिर सोचो लोगों के पास कितनी दौलत है. आज तुम्हें पता है, आज दिल्ली के अंदर पुलिस ने 2000 करोड़ के सिर्फ ड्रग्स पकड़े हैं. 100 करोड़ मिल रहा यार कसमें कोई किस्मत पे लाना
नहीं, मैं 1 मिलियन का जुगाड़ निकाल रहा हूँ कुछ।
हाँ,
मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ 1 मिलियन के लिए।
हाँ जी,
क्योंकि यहाँ मुझे पता चला है कि यार बहुत ज्यादा भी अगर आपकी पकड़ाई हो गई ना,
हाँ,
तो 6 साल 8 साल
अच्छा
इज नॉट मोर देन 8 या 10 ईयर्स। जिंदगी देने वाला है जी वो तो। और फिरौन तो वैसे ही बहुत ज्यादा जीता था, शैतान की हमेशा उम्र ज्यादा होती है। शैतान बने
बस बनना शैतान पड़ेगा,
ये शर्त है।
ये शर्त है, चलो ठीक है आमिर साहब, वेरी गुड।
माजरा चाहता हूँ, ऐसे सब मजाक कर रहा हूँ, सब निकल गया हूँ। बोले भाई आमिर भाई ने कहा था ये कर लो, 4-5 साल की तो बात है।
चलो ये करके देख लेते हैं।
आओ मेहनत से रहे, खुश रहे। और डिस्क्लेमर जो मेरा है, बच्चों को जरूर टाइम दें, अपने दिन में से 1 घंटा जरूर अपने बच्चों को टाइम दें, यकीन करें एंजॉय करेंगे और आपके बच्चे भी आपके साथ एंजॉय करें। मैं आपको बता दूं, मैंने आजकल ना इंडोर क्रिकेट शुरू कर दी है बच्चों के साथ, और मैंने कल 1-2 घंटा बॉलिंग कराई है, और उसके बाद मैं जब घर पे मुझे बच्चे ना उठाकर लेकर गए लेकिन मैंने हेड टू टो पसीना आया तकरीबन को 4-5 साल के बाद।
अच्छा,
यकीन करें
क्या बात है।
और इतना क्रिकेट खेला कर,
हाँ।
और मैं चाहूंगा कि आप सब भी टाइम निकालें।
तो तुम गर्मियों में भी धूप में सूखने के लिए नहीं बैठते हो?
नहीं, पसीना नहीं आता
गर्मियों में।
गर्मियों में गर्मियां होती कहाँ है,
गर्मियां कहाँ होती है, शदीद गर्मियां होती है।
पसीना जो एक वो जो हम होता था ना जब जवानी,
आप जाके लॉन में बैठे थे ना
क्रिकेट खेलते थे,
आप गर्मियों में
टपा कर रहा है, आप देखो
वो लॉन की जरा मोइंग करो जरा थोड़ी सी ना गर्मियों में, जून जुलाई अगस्त में, हाँ कुछ होता है, बहुत होता है। ये मेरे
हमारा टाइम 9 बजे तक होता है ना, जुलाई अगस्त में हम घर ही मगरिब पे पहुंचते हैं तो 9:15 बजे।
सैटरडे संडे तो आपके पास होता है ना, सैटरडे संडे में आप अगर वो उधर 2-3 घंटे अगर मोइंग करेंगे तो आप देखना।
लेकिन मेरा ये कि बच्चों को टाइम दें, मेरा था कि बच्चों के साथ एंजॉय करें और उनको आपकी बहुत जरूरत है, और अपनी नस्ल की फिक्र करें, छोड़ दें बाकी पाकिस्तान की इतनी फिक्र ना करें, यहाँ जो आपकी नस्ल है ना उसकी फिक्र करें।
अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। जबरदस्त किस्म के यहाँ पे जो है रूम्स हैं, खाने हैं, बड़े इनोवेटिव किस्म के आपको वो सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बेगमात को लगाओ शादी पे और खुद को खेलने जाओ आउटडोर गोल्फ पे, है जी। तो बहुत जबरदस्त इन्होंने जो है सारों के लिए जुगाड़े निकाली हुई हैं, तो आप जरूर जाएं। और अगर अपना कोई भी इवेंट आप करना चाहते हैं तो इनको कॉल कर लें 9054588888। और जनाब ओपन माइक कैफे नासिर शाह साहब कहते हैं जबरदस्त खाने हैं, बड़े ऑथेंटिक हम लेकर आए हुए हैं कुक्स, तो आप उनसे जाके वहां पे ओपन माइक कैफे में अच्छे खाने का एंजॉय का मजा लें। इनका नंबर है 4165266800। एंड जनाब पायल ज्वेलर्स असलम भाई होते हैं, और जबरदस्त किस्म की यहाँ पे ज्वेलरी है। कोई भी आपके इवेंट्स हैं छोटे बड़े और आपको कोई भी सुविधाएं इनसे भी चाहिए हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, यहां पे होती हैं हमारी प्यारी सी डॉक्टर नाजिया रहमान, बड़े जबरदस्त किस्म की हर तरह की सर्विसेज देती हैं। आप इनको जाके मिलें 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट E104 एट ब्रैम्पटन के अंदर, और आप इनको कॉल भी कर सकते हैं 9058721100। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी खबरों की तरफ, और पहली जो हमारी खबरें में जो पहली खबर है वो है जनाब टूडो साहब के बारे में। आपको पता ही, हम कल आपको बता रहे थे कि एक और दूसरा नॉन कॉन्फिडेंस मूव लेकर आई है कंजर्वेटिव पार्टी, तो वो भी फेल हो गई, और वो फेल हुई इस दफा 207-121, यानी कि 207 ने हक में दिया, 121 ने उसके अगेंस्ट दिया कि नहीं जी हम गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते हैं। लेकिन जो इसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी का नारा था वो वही था फिर से, उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये बताना चाहते हैं हाउस को कि लोगों का गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस चला गया है, हमको जो है ये जो कार्बन टैक्स है इसको एक्स करना है, हाउसेज बनाने हैं, बजट फिक्स करना है और क्राइम को स्टॉप करना है। उन्होंने जो है जगमीत सिंह साहब को बड़ी बातें बनाई, उन्होंने कहा जी कि ये जो है वर्किंग कैनेडियंस को इन्होंने बेच दिया है। जगमीत सिंह साहब ने कहा जी कि मैं तुम्हारे पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है पियर पॉलीएफ जो है वो क्या गेम्स खेल रहा है। ब्लॉक के जो लीडर थे फ्रैंकवा ब्लाशे, उन्होंने अल्टीमेटम लास्ट वीक वैसे लिबरल्स को दिया था, तो उन्होंने अब फिर से कहा है कि भाई अब जो है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हमारी जो दो मांगे हैं उसको पूरी करो। और उन्होंने कहा जी कि हमने चाहते हैं कि बिल सी 319 जो है, जिसका के मतलब है कि 10% इंक्रीज टू ओल्ड एज सिक्योरिटी पे आउट फॉर सीनियर्स 65 to 74 वो करें, और बिल सी 282 ये वो कहते हैं जी कि ये जो आप प्रोटेक्ट करें हमारे डेयरी एग और पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उनको। कंजर्वेटिव पार्टी एनडीपी और ग्रीन्स जो थे ये जब लास्ट ईयर लेकर आए थे लास्ट अक्टूबर में ये अपना बिल, तो इसको उन्होंने वोटिंग में इसको सपोर्ट किया था। लिबरल पार्टी और एक और जो इंडिपेंडेंट एमपी थे उन्होंने इसके अगेंस्ट किया था, और अब वो लिबरल पार्टी को कह रहे हैं कि भाई नाउ इज योर चांस, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि क्रिसमस से पहले एक और थर्ड जो है नो कॉन्फिडेंस मूव ये लेकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू द जो है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर जो है उनका कहना है कि अगर ये ब्लॉक क्यूबेकवा की ये बात मानी गई, इनकी सारी ये जो मांगें पूरी की गई, तो इसके अंदर 5 साल में $16 बिलियन जो हैं वो गवर्नमेंट को स्पेंड करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट के पास कहां पैसे, हमने सारे पैसे तो यूक्रेन को दे दिए हैं जी, तो ऐसे है। तो बहरहाल जी देखेंगे भी क्या करेंगे। और जनाब आज डकफोर्ड साहब ने कहा जी कि ऑफिशियली जो न्यू ऑन्टेरियो लाइन 1 है सबवे जो बन रही है ऑन्टेरियो टोरंटो में, उसका काम जो है वो शुरू हो गया है और ये एक्सपेंड करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को। इनके साथ जो थी आज टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ भी थी, तो डकफोर्ड साहब ने कहा कि ये ह्यूज माइलस्टोन है, ये सिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। 15.6 किलोमीटर की ये लाइन जो थी सबसे पहले डकफोर्ड गवर्नमेंट ने 2019 में अनाउंस की थी, और अब आज उन्होंने कहा जी कि ये बाय एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक ये कंप्लीट होगी। इसके ऊपर तकरीबन $70 बिलियन जो है वो लगेंगे। इसमें डकफोर्ड साहब ने कहा कि हजारों ही फैमिलीज के जो एवरीडे कम्यूट है उसका टाइम कटेगा, और ये ट्रांजिट की सर्विसेज फैलेंगी, और लाइन के साथ साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ एक अंडरग्राउंड टनल भी बनाया जाएगा ऑन ईस्ट साइड ऑफ डॉन वैली एट मिंटन प्लेस साउथ ऑफ ली साइड ब्रिज, और दिस विल गो टू न्यू डॉन वैली क्रॉसिंग वेस्ट डॉन क्रॉसिंग ब्रिजेस, और कनेक्ट करेगी थॉर्नक्लिफ पार्क को और फ्लेमिंगडन जो पार्क्स हैं उनको भी। तो काफी जो है ये इसके लिए एक्साइटेड थे आज डकफोर्ड साहब। ऑन्टेरियो के अंदर जनाब टीचर्स की बेतहाशा कमी आने वाली है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट पे भी जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो भी ऑन्टेरियो में बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डाटा ये कंडीशन जो है वर्स हो जाएगी रीचिंग 2027। इनके जो आज डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो ये शो करते हैं कि ऑन्टेरियो के अंदर बड़े ये लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रिक्रूटिंग और रिटेनिंग क्वालिफाइड टीचर्स को। इसमें सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स फ्रेंच और टेक्निकल एजुकेशन के रेल में आ रही हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जिल डनलप की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि जो प्रोसेसिंग टाइमलाइंस हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए उसको हाफ कर रहे हैं। 2 ईयर का जो टीचिंग कैंडिडेट टू वर्क एज सप्लाई टीचर है वो अलाउ कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सीनियोरिटी बेस्ड हायरिंग को विद मेरिट बेस्ड सिस्टम, ताकि जल्दी से रिक्रूटमेंट्स की जा सकें। और असल में हुआ यह था कि 2015 की उस वक्त की जो लिबरल गवर्नमेंट थी उसने जो टीचर्स कॉलेज को 2 ईयर्स बनाया था इंस्टेड ऑफ 1, तो एडमिशन रेट्स जो हैं वो नीचे आ गए हैं, ओवर 7,600 इन 2011 टू 4,500 इन 2021। ऑन्टेरियो टीचर्स फेडरेशन ने एस्टीमेट किया है कि 48,000 टीचर्स जो हैं वो सर्टिफाइड हैं, वो काम कर सकती हैं ऑन्टेरियो के अंदर, लेकिन प्रोसेसेस जो हैं गवर्नमेंट के इतने लेंथी और आर्केक हैं कि उसके बायस जो है उनको इंडक्ट नहीं किया जा सकता। और बात ये बिल्कुल ठीक है, दो पैसे की आप एक ताट मारने वाली कोई नौकरी के लिए जाएं आप ऑन्टेरियो में जो है ये एजुकेशन सिस्टम में, तो 50,000 जी आपके इंटरव्यूज ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं आपको कोई सीईओ के लिए हायर कर रहे हैं। ये तुम्हें आता है, ये तुम्हें आता है, और भाई तुम एक ताट मारने वाला हायर कर रहे हो यार, तुमको क्यों इतना ज्यादा वो उसका क्वालिफिकेशन, अपना जी सीवी दे। ताट मारने वाले को कहते हैं अपना सीवी दो, अगर भाई तुमने जिंदगी में किधर किधर ताट मारे हैं, 25 साल का तुम्हारा तजुर्बा है ताट मारने, आई मीन व्हाट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट एंड शीयर नॉनसेंस है इनके प्रोसेसेस जो है। एप्लीकेशन कोई आप डालें पाकिस्तान से कि जी मैं विजिट करने अपने भाई या बहन को, पूरा उसका छजरा नसब मानते हैं, तुम्हारे 10 बहन भाई हैं उन सब के जी तुम अब डिटेल्स दो, क्या मतलब है तुम्हारा उनके 10 बहन भाइयों के डिटेल्स, उस बंदे का देखो वो किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो गलत तो नहीं है क्या। सो बिल्कुल नॉनसेंस किस्म के इनके प्रोसीजर्स हैं, कोई इन्होंने आज से बाबा आदम के जमाने के जो रखे हुए हैं उनको ना तो ये अपडेट कर रहे हैं और ना ही जो है कोई देयर सिस्टम्स आर मेकिंग एनी सेंस। और वैसे बहुत बड़े बने हुए हैं, बस यूनिवर्सिटियां 4 खोली हुई हैं, यानी इतनी इनको सेंस नहीं है कि इतना इनका बच्चा जो है यहां से कनाडा से दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ाई कर रहा है। तुम दो मेडिकल स्कूल खोल लो, दो लॉ स्कूल खोल लो, दो कोई और अपने टेक्नोलॉजी के इधर स्कूल्स खोल लो भाई। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको थोड़े फंड दे दो ताकि वो अपनी फैसिलिटीज जो है उनको एनहांस कर लें, बढ़ा रहे। हजारों बच्चा जो है, आपको पता है मैं अभी डाउनटाउन टोरंटो के अंदर एक यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपना लगाया हुआ था, एग्जीबिशन लगाया हुआ था। हाई स्कूल के बाद चार साल में जी वो लॉ की डिग्री दे देते हैं बच्चों को, कोई ये एलसेट जैसे नॉनसेंस नहीं है। 1000 यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड जैसे छोटे मुल्क से जो आई हुई थी, और इनका आप हाल देखें, इनके कितने कैनेडियन बच्चे जो है एवरी सिंगल ईयर लॉ करने इंग्लैंड में जाते हैं, और इंग्लैंड की आपको पता है जिस तरह की उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो भाई तुम लोग भी अपने यहां पे सिस्टम्स करो, ये सारे का सारा पैसा तुम्हारे अपने मुल्क में रहेगा, वहां पे जाके बच्चे पाउंड्स में पे करते हैं। भाई ये तुम चाहते नहीं हो हम अपने मुल्क में रखेंगे, कोई मतलब है सीधी पॉलिसी नहीं है, कोई सीधी पॉलिसी नहीं है। सऊदी के साथ लड़ाई की हुई है, उनके जो जितने भी बच्चे आते थे इतनी स्पेंडिंग करते थे, उनके जो डॉक्टर्स और नर्सेज आके यहां पे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए फ्री काम करते थे, उनके साथ हर मतलब ऐसे माशाल्लाह खूबसूरत सिस्टम बनाए हुए हैं कि जो है हर किसी को बस तंग करके जो है वो रखा हुआ है। आज जनाब कैमरून विलियम्स 24 ईयर सिर्फ इस बच्चे की उम्र है, और इसको ओशवा पुलिस जो है ये ओशवा का रहने वाला है, और इसको पुलिस ने पकड़ा है ऑन चार्जेस ऑफ स्मगलिंग ड्रग्स एंड प्रोहिबिटेड वेपन पार्ट्स अक्रॉस कनाडा यूएस बॉर्डर। आप सोचें जरा कि ये 24 साल का बच्चा जो इस वक्त ये काम कर रहा है उसकी क्या जो है आगे लाइफ होनी है। लास्ट मई में सीबीएसए जो है उसने एक इन्वेस्टिगेशन डाला था क्योंकि बेतहाशा ड्रग्स और ये जो आर्म्स थे ये यहां पे आ रहे थे, तो उसमें जो है सीबीएसए और डरहम रीजनल पुलिस सर्विसेज की जो टेक्निकल सपोर्ट टीम थी उन्होंने वारंट्स डाले थे दो घर जो थे उसमें ओशवा में, और फिर वहां पे जब उन्होंने रेड्स डाले तो वहां से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स, एमडीएमए, कोकेन, मेथ, फेंटेनॉल, और ये जो एम्यूनिशन है बहुत सारा, और मैगजीन्स, और ये फायरआर्म कन्वर्जन किट्स और सेल फोन्स मिले थे इनको। इसके अलावा 23,800 कैनेडियन डॉलर्स इनको मिले थे। ये जो लड़का है विलियम ये अब अपीयर करेगा कोर्ट के सामने अक्टूबर 24 को। तो क्राइम्स आप देखें कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। पुलिस अफसर बनने के लिए आप जाएं, एक एप्लीकेशन आप डालने के लिए आपको 50,000 इनकी वेबसाइट्स पे इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं, ये करें ये करें। ओ भाई एक पुलिस वाला सीधा आप बेचारे को कर रहे हैं, ठीक है उसका क्रिमिनल आप बैकग्राउंड जरूर चेक करें, ट्रेनिंग उसको दें और इंडक्ट करें, नहीं जी नहीं। 50,000 सिस्टम्स हैं, एक बस का जो ड्राइवर है बेचारा उस बस के ड्राइवर को अपॉइंट करने के लिए जी साल साल लगा देते हैं ये। तो भाई आपके प्रोसेसेस इतने थकेले जो हैं वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थकेले चलेंगे तो आपका प्रोसेसेस आपके कैसे मुल्क में चलेंगे ना, आपकी तो हर चीज की फिर शॉर्टेज आएगी। अच्छा जनाब कल रात ट्यूसडे के दिन जो थी आपने देखी होगी कि वॉल्स और वैंस साहब के बीच में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में डिबेट थी, तो ये जो बैटल थी दो मिड वेस्टर्न पॉलिटिशियंस के बीच में कल, ये ऑफकोर्स बड़े ही जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इनके नजर में उनके ऊपर गई। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कमला हैरिस के साथ, और ओहायो के सेनेटर जेडी वैंस जो हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं ट्रंप के लिए, उनके बीच में बातचीत हुई। मिडिल ईस्टर्न जो अफेयर्स थे जाहिर है कि इसराइल गाजा ये वो, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने फिर से कहा कि जी हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और ये जो हैं बड़े बैड गाइज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और हम इनको अपनी सपोर्ट देते रहेंगे। इसके अलावा जो है अभी 5 वीक्स रह गए, आपको पता ही है क्योंकि नवंबर 5 को जो है इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब लग नहीं रहा था कि एक दूसरी डिबेट होगी, लेकिन ये डिबेट जो थी इसमें काफी चीजें जो है सामने आई हैं। और इसके अंदर इसके अलावा उन्होंने पूछा जो कर रहे थे मॉडरेट कर रहे थे इवेंट को, वो उन्होंने पूछा कि भाई गन वायलेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं किया जा रहा और रोज रोज जो है वो स्कूल्स के अंदर शूटिंग्स हैं, इधर उधर शूटिंग्स हैं, और बड़ा इसके अलावा अबॉर्शन के ऊपर आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उसके ऊपर बात की। तो काफी डिटेल में इनके जो है आपस में दोनों देखेंगे। पता नहीं लोगों को कैसा लगा ये कि लेकिन मैं जो ये डिबेट कल सुन रही थी वैंस और वॉल्स के बीच में, मुझे तो वॉल्स जो है ये कमला हैरिस के जो अपॉइंटी हैं मुझे बिल्कुल ही बहुत ही जरा डीले लगे, और वैंस जो थे चाहे जितने मर्जी वो कंट्रोवर्शियल हों बड़े शार्प लगे कल की डिबेट में तो मुझे। तो बहरहाल एनी वेज आपके आप अपना खुद का वो कर सकते हैं, लेकिन जीतना तो कमला हैरिस नहीं है। आमिर नहीं मानता इस बात को। नॉर्थ कैरोलिना में जनाब बड़े डेविस्टेटिंग किस्म के स्टॉर्म्स आए हुए हैं और हमारी बहन जो है हेलन स्टॉर्म हेलन जो है वो यहां पे आया हुआ है. इसके अंदर जो है तकरीबन 140 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं नॉर्थ एंड सदर्न कैरोलिना में, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, टेनेसी और वर्जीनिया के अंदर. लिस शेयरवुड रैंडल व्हाइट हाउस होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो कहती हैं जी कि ये जो फिगर है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें लग रहा है कि 600 के करीब लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं. नॉर्थ कैरोलिना में 300 रोड्स को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि वो टूट गई हैं सारी. 7000 लोग जो उन्होंने रजिस्टर किया फॉर यूएस फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एड. नॉर्थ गार्ड्स जो हैं वो 1000 टन ऑफ फूड एंड वाटर जो हैं रिमोट एरियाज के अंदर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं और काफी ज्यादा यहां पे तूफान तबाही मची है. अगर आप देखें तो रोड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे रिप ऑफ कर गई हैं और घर जो हैं वो सारे बहुत सारे टॉस किए और जितनी भी कम्युनिकेशन लाइंस थी वो सब शट डाउन हो गई थी. कोई बंदा जो है वो अपने कोई मैसेजेस ना भेज सकता था ना टेलीफोन्स कर सकते थे. काफी बुरी हालत. इसके साथ साथ ताइवान जो है उसके अंदर भी टाइफून क्रैथॉन जो है वो आया है, उसकी वजह से जो है वो ऑफिसेज को क्लोज किया गया है और अभी पूरी तरह नहीं आया, अभी तो उसके रेमनेंट्स आए हैं पूरी तरह, तो वो कहते हैं आएंगे तो बड़ी तबाही मचाएंगे. भारत जी हजारों ही जो लोगों को यहां से जो तूफान का एरिया वहां से इवैक्यूएट किया गया, बहुत सारी फ्लाइट्स और फेरीज जो हैं उनको वहां पे भी कैंसिल किया गया है. अच्छा जनाब, सबसे बड़ी कहानी जो हमारी आजकल है वो तो आजकल वही है, इसराइल और जो हिजबुल्ला के बीच में लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है. आपको कल हमने बताया था कि जो ईरान है उसने कोई तकरीबन सैकड़ों ही इनके ऊपर जो है मिसाइल्स मारे थे कल. तो अब जो सदन लेबनान के बीच में लड़ाई है दोनों के बीच में वो फिर और ज्यादा तेज हो गई है. इसके बीच में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू साहब ने कहा जी कि ये जो कुछ ईरान ने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं उसका हम जवाब देंगे उस वक्त जब हमारा दिल चाहेगा. हिजबुल्ला जो है उसने भी कंफर्म किया है कि लड़ाई ज्यादा तेज शुरू हो गई है लेबनान में, खासतौर पर ये जो टाउन है मरून अल रास का उसके अंदर, और ये सिर्फ एक मील दूर है इजरायली टाउन ऑफ एवीवीम से जिसको के ईरान ने टारगेट भी किया था. यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ज्यादा वार्न किया है कि इसमें लेबनीज जो सिविलियंस हैं उनकी बहुत ज्यादा डेथ होगी तो लड़ाई को रोका जाए. इजरायली इसमें जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुतरस, उसने कहा कि मैं इलाके में जाके दोनों से बात करना चाहता हूं. इसके ऊपर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इसराइल कैट्स जो है उसने कहा जी कि एंटोनियो गुतरस जो है परसोना नॉन ग्रेटा यानी कि बिल्कुल नापसंदीदा शख्स है, हमारे मुल्क में बिल्कुल एंटर नहीं हो सकता, और उन्होंने इनको एक्यूज किया कि तुमने यूनिविकली क्यों कंडेम नहीं किया है इसको ईरान का जो अटैक है हमारे इसराइल के ऊपर. और उन्होंने कहा जी कि पूरे एक साल से ये लड़ाई जारी है, तुम लोग क्यों कंडेम नहीं कर रहे हो हमास को. इसके साथ साथ ईरान ने कहा जी कि हमने जो कुछ करना था हमारे जो इन्होंने लोगों ने को मारा था और हमारी सॉवरेनिटी को इन्होंने चैलेंज किया था इसराइल ने, लेकिन हम इसराइल के साथ लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं. इसराइल और यूएस जो है उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे. हालांकि यूएस जो है उसने ये कहा है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं लेकिन अगर इन्होंने ज्यादा ईरान के ऊपर लड़ाई झगड़ा किया तो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब हो सकते हैं. आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, इसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने भी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी इमीडिएट सीज फायर का इसराइल और हिजबुल्ला को कहा है. यूके, स्पेन, इटली जो है वो बहुत ज्यादा वरिड है कि ये अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फैल गया तो ये पूरे रीजन को अपने लपेट में लेगा. इसराइल इसके साथ साथ ना सिर्फ, अब आप देखें इसराइल को कितने कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, यमन पे कर रहा है, गाजा के साथ कर रहा है, लेबनान के साथ लड़ाई कर दी है, अब इन्होंने सीरिया के ऊपर भी जो है अटैक्स शुरू कर दिए हैं. इनके जो अटैक्स डोमेस्कस के ऊपर किए गए हैं उसके अंदर 3 लोग मर गए हैं और 9 लोग जो है जख्मी हैं, लेकिन अभी भी दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और ये जो है हिजबुल्ला और हमास और यमन एंड सऊदी एंड ईरान, दे आर ऑल ईवल, बस एक ईवल नहीं है उस रीजन में एंड दैट इज इसराइल. इसराइल बिल्कुल ठीक है, सच्चा है, बहुत नेक शरीफ जो है, अपनी किताब का और कानून का पाबंद है, बाकी आसपास सारे जो है ईवल है इसके आसपास जो है. और ये अटैक हर किसी पे कर सकता है और इसके ऊपर जवाब में कोई अटैक नहीं कर सकता. ये पूरे एक साल से गाजंस को मार रहा है, उनके इलाकों पे कब्जे कर रहा है, यमन पे अटैक कर रहा है, आज सीरिया पे भी किया है, ईरान के ऊपर भी आंखें दिखाएगा, लेकिन जब इसकी जो शैतानी और अग्रेशन के जवाब में अगर ईरान जवाब देगा तो बुरा कौन है जी? ईरान बुरा है, यमन बुरा है, सीरिया बुरा है. ये बहुत नेक और शरीफ है,
बिल्कुल ठीक कह रही है, 100%
ये बहुत नेक और शरीफ
है. जिहाद कर रहे हैं ना?
हाँ, जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान
जिहाद है. वो कहते हैं दिस इज द प्रॉमिस लैंड, गॉड ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, हम उसके लिए काम कर रहे हैं.
तो अपने 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 ही किसी रैबाई के पास चले जाएं, अपने ही रैबाई इनको स्क्रिप्चर्स पढ़ के बताएंगे. दे कैन नॉट हैव अ कंट्री ऑफ देयर ओन. अगर अपने किसी ये सही दिमाग के रहवाए के
इस बात को समझनी होगी मुसलमानों को जितने भी आसपास हैं कि एक्चुअल में वो अपने हिसाब से जिहाद कर रहे हैं।
हाँ, जिहाद कर रहे हैं। हाँ, तो मुसलमान ईविल हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लिज ट्रसल जो है स्पोक्स पर्सन फॉर यूनाइटेड नेशंस राइट ऑफिस, उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ जिनीवा में बात करते हुए कहा जी कि ये वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसराइल और हमास के बीच में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ना सिर्फ रीजन बल्कि जो मासूम सिविलियंस उस इलाके में रह रहे हैं उनको जो है वो करना पड़ेगा। तो भाईजान फिर आप बातें क्या कर रहे हो, आप क्यों बातें? नहीं नहीं आजीशान, ये पिक्चर नहीं है इसकी, वही थी इसराइल और हमास वाली पिक्चर है। हाँ जी, अच्छा इसके ऊपर बात करते हुए बाइडन साहब जो हैं उन्होंने भी आज रिपोर्टर्स को कहा है, वो आज कहीं जा रहे थे अपने एयरफोर्स वन पे चढ़ के, और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि इसराइल जो है ईरान पे अटैक करे। उसकी वजह यह, उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब इसराइल ने कहा कि जी